जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम Raise your hands. जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय श्री राधे श्याम यस यस वी आर नॉट जोकिंग वी आर वेरी सीरियस व्हाट वी से वी आर वेरी सीरियस इन वृंदावन मे बी से वी वी से लाफिंगली और एंग्रीली बट वॉट एवर वी से वेरी सीरियसली हरे कृष्णा दोज हु कैन सिट एंड बी अवेक They are allowed to sit. And those who don't are not confident about that, they stand. And if those who sit go to sleep, it's a very serious Vaishnava apraadh. And you have already heard at Ramtal the science of Vaishnava apraadh, how it works. So decide yourself which way you want to go. Main to khade rahunga. क्योंकि मैं बहुत तजुर्बेकार हूँ मैंने बहुत बहुत साल इसका अनुभव लिया है इसलिए मैंने पिछले कई सालों में बहुत सारी ऐसी खड़ी खड़ी कथाएं की हैं कई जगह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग धामों में तो उसी का अनुकरण करते हुए आज की कथा भी खड़े खड़े ही होगी जय जय श्री राधे तो अभी हम ये सब ना जहां पर हम लोग आते हैं ना अभी आ रहे हैं आए हुए हैं सब ये गुप्त स्थान है जैसे हमारे प्रभु जी अक्षुभ्य कृष्ण प्रभु एक घंटा पूछते रहे कहाँ है ये स्थान किसी को पता नहीं क्योंकि सब लोगों को ये स्थान पता नहीं वो जो मंदिर है ना पीले दरवाजे वाला उसके मेरे राइट साइड में एक पेड़ का गार्ड लगा के रखा है ना ट्री गार्ड उस जगह पर वो पेड़ था कदम का, जिस पर राधा रानी के चरणों के निशान थे और जिस पर हर राधे राधे लिखा हुआ था, कई जगह पर वो स्थान है। अभी दूसरा पेड़ लगाया गया। तो ये रासमंडल है, राधा वल्लभ जी मंदिर का रासमंडल है। यहाँ पर रास नृत्य होता है, यहाँ पर राधा रानी कृष्ण भगवान की लीलाओं का नाट्यमय प्रकट्य होता है, प्रदर्शन होता है। कई बार यहाँ पर आए हैं और राधा वल्लभ जी का संक्षेप में इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। इस बार उसकी नाटिका भी प्रस्तुत की गई। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो शिव जी के भक्त थे और शिव जी की निरपेक्ष भजन करते थे। आमतौर पर देवताओं का निरपेक्ष भजन कोई करता नहीं, कुछ ना कुछ चाहिए होता है उनको। तो आत्मदेव पर शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए, उन्हें दर्शन दिया। आत्मदेव से कहा कि आप वर मांगो, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई इच्छा ही नहीं है, तो वर क्या मांगे, हम आपको चाहते हैं बस। नहीं, वो कहते हमारा दर्शन खाली जाता नहीं है कभी भी, आपको कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। तो शिव जी को आनंद मिलेगा मेरे मांगने से, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ मांगना चाहिए। अगर उनकी ये इच्छा है कि मैं मांगूँ और उन्हें खुशी मिले, आनंद मिले, तो उनके लिए उन्होंने कुछ सोचा और कहा कि आपके प्राण धन जो है, जिस चीज़ को आप प्राण धन मानते हो, वो मुझे आप दे दीजिए। तो शिव जी ने बहुत सुंदर नृत्य किया उस समय आनंद से। कैसा भी कोई व्यक्ति है जो दुनियादारी की चीज़ों को छोड़कर मेरे प्राण धन को भी चाहता है, तो मैं किसको चाहता हूँ उसको भी चाहना चाहता है। क्योंकि आमतौर पर सभी लोग क्या है ना, अच्छी पत्नी दो, अच्छे पति दो, धन दो, ये दो, वो दो, वही मांगते रहते हैं। वो भी देते हैं वो, लेकिन उनको सही आनंद तब होता है जब भी वो भगवान के विषय में कुछ मांगे, और वो देने में भी वो क्षमता रखते हैं सारे देवता लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने मुझे इतना आनंद दिया है, कल सुबह उठकर आप अपने कुएं में उतरो स्नान करके, और एक टनल में अंदर मेरे प्राण धन आपको मिलेंगे। तो रात को ही उठ जाते हैं, बीच में स्नान वान करके शुचिर्भूत होकर अपने कुएं में, उस समय वो सीढ़ियाँ हुआ करती थी, अभी भी बहुत गांव में जाएंगे तो सीढ़ियाँ मिलेगी आपको, और कई यहाँ एक रास्ता उधर का एक रास्ता, ऐसे भोगदे में घुस गए। उसके आखिरी स्थान पर उनको राधा वल्लभ जी प्राप्त हुए। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की। राधा वल्लभ लाल जी प्राप्त हुए उनको, फिर उनका वो पूजन करने लगे। काफ़ी समय बीता और उसके बाद में भगवान के बंसी के अवतार हुए, और मेरे ख्याल से वो ओरछा में थे ना, भगवान हरिवंश जी महाराज जी उनका जन्म जो है वो ओरछा में हुआ, मध्य प्रदेश में, और वहाँ से बादग्राम सही बात है। तो वहाँ पर जन्म हुआ उनका, अवतार हुआ, और फिर वो बड़े हुए, उनके विवाह हुए। उसके पश्चात एक दिन राधा वल्लभ जी हित हर आत्मदेव ब्राह्मण के स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि मेरे बंसी के अवतार, मेरे परम भक्त जो हैं वो ब्रज में आने वाले हैं, तो जब वो आपको मिलेंगे तब आपकी कन्या विवाह में और मुझे दहेज में दे देना। और उनके भी स्वप्न में आए कि आप जब वृंदावन जाएंगे तो आपके आत्मदेव ब्राह्मण से मुलाकात होगी, तब वो मुझे आपको सौंपेंगे अपनी कन्या के साथ, तो उसको स्वीकार कर लेना। तो यथावकाश आत्मदेव ब्राह्मण वृंदावन आए, आत्मदेव हित हरिवंश जी, हरिवंश जो वंशी के अवतार हैं, थोड़ा आवाज़ कम करो, हरिवंश जी जब वृंदावन आए तो देखो कैसा होता ना, संतों का रिश्ता जो है ना वो ऐसे भौतिक रूप में नहीं होता है, आत्मा आत्मा को पहचान जाती है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इट टेक्स वन टू नो वन, है ना। तो वैसे ही इनका ऐसा कुछ परिचय नहीं था कि वो लंबे होंगे, 6 फुट 3 इंच वाले गोरे होंगे और मूछ वाले होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही वो आमने सामने आए, दोनों के हृदय में ये अनुभूति हुई कि ये वही हैं जिनको हमको मिलना है, और इतने ही उन्होंने आलिंगन दिया एक दूसरे को, अश्रु बहाए, दोनों को नहलाया एक दूसरे ने प्रेम के अश्रुओं से, आनंद से। भगवान जिनके बीच में संबंध है, जिनके संबंध के बीच में भगवान है, वो संबंध दिव्य होता है ना। बाकी सारे संबंध जो है समय के साथ टूट जाते हैं, समय के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस संबंध में भगवान है वो चिरंतन हो जाता है। तो ऐसे आनंद का अनुभव किया, फिर वो अपनी कन्या और राधा वल्लभ जी को लेकर आए और उन्होंने आपको और उन्होंने उनको स्वीकार किया। और मैंने सुना है गोसाई जी से कि वो पत्नी को फिर वापस ओरछा भेज दिया। और वृंदावन में हमारे जो भक्ति विद्वान तो हॉस्पिस है ना, उसके बाद जो फर्स्ट राइट टर्न आता है उसमें एक मिनट के अंतर पर एक सुंदर स्थान है मदन टेर, उसको ऊंची ठौर भी कहते हैं। और वो जमुना किनारे वो जगह है, अभी तो जमुना बहुत दूर चली गई है, लेकिन वो जब भी हम भी आए थे पहले बार तभी भी जमुना जी बहुत पास में थी। तो वो जमुना जी के ऐसे जमुना जी वहीं से बहती थी और परिक्रमा रोड भी वहीं पर है। और वहीं पर कभी कभी जमुना जी को बाढ़ आकर भी वो एक जगह एक मार्क बना के रखा है, वहाँ तक जमुना जी आती थी ऐसे, इसलिए ऊंची ठौर कहा गया उसको। तो वहाँ पर हित हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ जी को लेकर रहे। वहाँ पर एक सुंदर बरगद का पेड़ है, आज वो पेड़ का अवशेष है, लेकिन वहाँ पर वो पेड़ था जिसमें इतने बड़े बड़े होल्स हुआ करते थे, मानो जैसे ड्राइंग रूम, लिविंग रूम लाइक अ फ्लैट, ऐसे उस पेड़ में तीन थे, तीन लेवल पे। तो एक लेवल में ये रहे भजन करते हुए, एक लेवल पे राधा वल्लभ जी रहे और एक लेवल पे सारे उनके साहित्य थे, पूजा अर्चा के ड्रेसेस ऑर्नामेंट्स वो रखे गए पेड़ के अंदर, क्या कहते हैं उसको, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स हाउस, इसी के अंदर विस्तार रूप में ऐसे बड़े बड़े पेड़ ब्रज में हुआ करते थे। आप लोगों को सुनकर बड़े आश्चर्य होगा कि ऐसे पेड़ थे ब्रज में कृष्ण के समय, जो नंदगांव के पेड़ है उनकी शाखा मथुरा तक पहुंचती थी यमुना जी को क्रॉस करते हुए। गोवर्धन में ऐसे पेड़ थे जिनकी शाखा नंदगांव व मथुरा तक पहुंचती थी। वृंदावन में ऐसे पेड़ थे जो पूरे ब्रज में फैलते थे चारों तरफ, और कई बार एक अनोखे प्रकार का गौचारण ग्वाल बाल करते थे। ग्वाल बाल पेड़ की शाखाओं पर चलते थे और गायें नीचे चलती थी, ऊपर से गौचारण करते थे, कभी इस शाखा पर कभी उस शाखा पर, और जमुना पार भी उस शाखा से करते थे क्योंकि शाखाएं कहाँ कहाँ से कहाँ फैला करती थी। ऐसे ऐसे पेड़ हुआ करते थे, अभी तो खाली सुनना ही बाकी है, अभी कुछ नहीं है ना। लेकिन ऐसा एक सुंदर पेड़ अभी भी है, वो है भांडीरवट, भांडीरवन में वो पेड़ जो है ना जहाँ पर कृष्ण भगवान का विवाह राधा रानी से हुआ था, वो भी ऐसा ही भव्य पेड़ है। ऐसा आप ना आपको चलना होगा कुछ मिनटों के लिए उसके शुरुआत के तक एंड तक पहुँचने के लिए, यहाँ शुरू चले करिए ना, आपको वहाँ तक चलना पड़ेगा। उतना ही बड़ा एक पेड़ है ऐसा, पूरा बहुत बड़ी शाखा है उसकी, उसके नीचे ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान का विवाह राधा रानी से किया था। तो ऐसे बड़े महत्वपूर्ण पेड़ थे, तो वैसा ही एक पेड़ था वो जिसके अंदर वो हित हरिवंश जी रहे। उन्होंने बहुत समय तक राधा वल्लभ जी का सेवा किया। तो उस समय एक यहाँ पर एक खूंखार डाकू था जिसका नाम था नरवाहन, याद रहेगा, अभी खीर के बाद में याद रहेगा, हाँ खीर के बाद में शरीर में कुछ बहुत अंतर हो जाते हैं, सब बायोकेमिकल डिफरेंसेस टेक प्लेस। तो वो सारे बायोकेमिकल इफेक्ट्स को डिफीट करने के लिए मैं खड़ा हूँ क्योंकि मैं भी उस बायोकेमिकल इफेक्ट्स का आदि हूँ। तो फिर वो नरवाहन डाकू था और वो बड़ा कुप्रसिद्ध था, इल फेमस, वो ऐसे खूंखार तरीके से लोगों को मारता था, लूटता था। तो ये जो आए वृंदावन में, तो संत के होने से क्या होता है, सारा वातावरण पवित्र हो जाता है, वातावरण में अंदर भी द्वेष, असूया, क्रोध, लोभ सब नष्ट हो जाता है। जहाँ पर वो रहते हैं ना उनके प्रभाव क्षेत्र में, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वहाँ पर सब लोग यही महसूस करते हैं, शांति, काम क्रोध वेग से मुक्ति, मित्रता द्वेष मुक्ति सब अनुभव करते हैं। तो इनके रहने से उस इलाके में जंगल में शेर भी हाथी से गले मिलने लगे, सिंह भी हिरण से गले मिलने लगे, कोई खूंखारता खत्म हो गई, सब मित्रता बनकर रहने लगे। तो ये ख्याति जो है वो पूरे ब्रज में फैल गई कि कोई बाबा आए हैं, बंसी के अवतार कहलाते हैं, और उनके होने से सब प्राणी मात्र जो है वो गले मिल रहे हैं। तो ये ख्याति जो है ये कुख्यात जो डाकू है उसके कान पे आती, अरे भले कुख्याति होगी या सुख्याति होगी, ये मुझसे अधिक कैसे हो सकती है, हाउ कैन ई बी मोर फेमस इधर इल फेमस और नाइसली फेमस, बट ही कांट बी मोर फेमस देन मी. सो बड़ा क्रोध से वो इनका वध करने के लिए आता है. वो डाकुओं का राजा है, उसके पास मुकुट है, राज वस्त्र है, हाँ गहने हैं, वो जूता है बहुत कीमती, घोड़ा है, तलवार है, सब लेकर, शस्त्र लेकर सज्ज होकर वो घोड़े पर बैठता है और वृंदावन की ओर निकलता है जहाँ पर इनका बताया गया है कहाँ पर है. तो फिर क्या होता है, कुछ देर बाद सोचता है कि अरे, कुछ देर बाद सोचता है कि एक साधु को मारने के लिए तलवार घोड़ा क्या जरूरत है, छोड़ दो उसको, मेरा एक हाथ ही काफी है. तलवार फेंकता है, घोड़ा छोड़ देता है और पैदल चलने लगता है. तो जमुना जी के रेत है ना, तो उसके जूता में घुस जाती है, तो जूता भी निकाल के फेंक देता है. मन में भाव कैसा है, क्रोध और वध की भावना मन में चल रही है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. तलवार छूट गई, घोड़ा छूट गया, जूता भी छूट गया. उसके बाद में रेत में चल रहा है तो गर्मी होने लगी, तो वस्त्र उतार दिए, बहुत गर्मी हो रही है, मुकुट उतार दिया, चल रहा है जोर जोर से, किधर है धर्यवंश, कहाँ है. बाय द वे, जब तक मदन टेर पहुंचता है तब तक केवल कोपिन बचती है और सब कुछ निकल जाता है. इसके पीछे भी रहस्य है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि संत के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो न जानते हुए विरक्ति हो रही है उसकी. इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग बट इज गिविंग अप एवरीथिंग वन आफ्टर अनदर. फिर भी वो क्रोध जो है ना वो छूटता नहीं है, बाकी सब छूट गया. तो आते हैं और देखते हैं कौन है इतरिवंशी, तो लोग कहते हैं महाराज जी, तो उसको घूर घूर कर देखने लगते. तब तक वो पेड़ के पास में आ गए होते हैं, क्योंकि पेड़ के पास ही महाराज थे, देख रहे घूर घूर के, अब यो हितवरंश. तो हितवरंश कहते हैं अरे नरवाहन, अरे नरवाहन, प्रभु निहार, मुझे क्यों देख रहा है, प्रभु को देख. ऐसे मुड़ के प्रभु की ओर इशारा करते हैं, प्रभु को देखते हैं. जैसे ही राधा वल्लभ जी को देखते हैं ना, उसका हृदय पिघल जाता है, कुछ ही क्षणों में पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है. और कुछ ही क्षणों में जो उनको मारने के लिए वध करने के लिए आया था, उनके चरणों में ना सा हृदय पिघल कर गिर गया. वो बोला महाराज जी माफ़ करना, मैं आपके वध करने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ. तो उनका शिष्य बन गया वो, और वहीं रह गया, वापस गए नहीं वो जहाँ से आया था. तो उसके राज्य में क्या खबर मिलेगी, जंगल में गया था शायद, किसी शेर वेर ने मार के मार दिया होगा, तो राजा खत्म हो गए. तो एक योग्य व्यक्ति को नेक्स्ट इन लाइन उनको राजा बना देते हैं, और उनका काम शुरू होता है अपना डकैती का. उनका एक डकैती का स्टाइल था, वो राजा के नेतृत्व में, नरवाहन के नेतृत्व में, जिसको भी लूटते थे ना, उसको लूटने के बाद कपड़े वपड़े उतार के फाड़ के पेड़ पे उल्टा टांगा करते थे वो लोग. दैट इज मोडस ऑपरेंडी ऑफ देयर डकैत. तो फिर वो इधर रहने लगा संत महाराज जी के पास में, भजन करने लगा, और बड़ा बलवान था वो, बहुत अकेले अकेले लोगों को लूटता था, तो शक्ति बहुत थी उसकी. तो वो फिर ब्रज की रक्षा के लिए घूमने लगा, पहले लोगों को मारने के लिए, वध करने के, लूटने के लिए शक्ति का प्रयोग करता था. अभी वो ब्रज में कोई किसी भक्त, कोई गरीब आदमी, कोई आतंक में है, कष्ट में है, तो उसकी रक्षा करने के लिए रात रात गश्त लगाया करता था. तो एक दिन दूसरे राजा के डकैतों ने आकर किसी को लूट लिया, उसी तरह से उसको पेड़ में टांग दिया, वो पुकार रहा है बचाओ बचाओ बचाओ. तो एक बुढ़िया वहाँ से आती है, बोले बचाओ बचाओ क्यों कर रहे हो, नरवाहन नरवाहन करके पुकारो, क्योंकि नरवाहन घूमते हैं, वो आपको आके बचाएंगे. तो वो नरवाहन नरवाहन करके पुकारता है. फिर वो पुकार की ओर ये पहुँच जाते हैं और देखते हैं ये अपने लोग हैं जिन्होंने ये किया है, तो उसको उतार देते हैं. उतार के बड़े प्रेम से उसी को सीधे लेकर चले जाते हैं अपने राज्य में जहाँ से वो आए थे. जैसे आते हैं सरदार देखकर सब लोग डर जाते हैं, अरे महाराज आप जिंदा हो, हाँ मैं हूँ, इसके सारे गहने वापस करो, इसको राज वस्त्र दो, इसको खाना पीना खिलाओ, इसको दक्षिणा दो, इसको पालकी में बिठाकर घर पहुँचा के आओ. इस तरह से उनका वो उद्धार कर देते हैं. नरवान की बहुत सारी कथाएं, लेकिन सिंपल कथा ये है कि उसके बाद में वो साधु के संग में इतने पवित्र हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अभी दुनिया में कुछ रुचि बची नहीं है, मैंने पूरा वृंदावन मेरे कब्जे में था, राज्य था मेरा फोर्स से लिया हुआ, तो मैं आज वो आपको दान करना चाहता हूँ. मैं एक बाण चलाऊँगा और बाण जहाँ तक पहुँचेगा वो सारी भूमि में आपको दान देना चाहता हूँ. तो मदन टेर पर खड़े होके उसने धनुष पर तीर लगाकर तीर छोड़ा है, वो जमुना जी पार करके उधर गिरा है, तो जमुना जी के पार क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर जहां पर राधा रानी एक बार मान करते हुए बैठकर रोई थी, कृष्ण भगवान रास में देर से आए थे, वो पहले आई थी, वो नाराज हो गई, जमुना पार करके वहां जाकर रोई, और जब रोई तो उनके अश्रुओं से एक बहुत उष्ण उष्ण अश्रुओं से एक बड़ा कुंड बना, मानसरोवर, उनके विरह का प्रतीक है वो। तो उस जगह भी आज भी राधा वल्लभ जी के गोसाइयों की सेवा है, उसका प्रमाण है कि वो हित हरिवंश महाराज के अधिकार में आई जगह वो, और मान मंदिर की सेवा, मान सरोवर की सेवा भी उनके हाथ में आई। तो आज भी राधा रानी का विग्रह है वहाँ पर, जहाँ पर उनकी सेवा होती है, राधा वल्लभ जी के मंदिर के तरफ से होती है, ठीक है। तो आगे जाकर फिर ये जो प्रॉपर्टी है वृंदावन की, फिर वो हित हरिवंश के शिष्य हुए, हरिराम व्यास जी हुए, बहुत सारे लोग हुए, उनको उन्होंने एक एक को बांटा उसको, और भगवान के विग्रहों को स्थापन करके वहाँ पर सेवा आरंभ किया। तो ये मदन टेर वहाँ से फिर बाद में हित हरिवंशी उनको लेकर वृंदावन के बीच में आए और पहला मंदिर बना, लेकिन वो मुसलमानों ने भ्रष्ट किया उसको, इसलिए दूसरा मंदिर बना। आज जहाँ पर राधा वल्लभ जी विराजमान है वो दूसरा मंदिर है, पहला मंदिर उसके बाजू में है, उसमें अभी हित हरिवंश महाराज का प्रतिमा रखी हुई है, वहाँ उनकी सेवा होती है, और उसी के पीछे हमारे घनश्याम बाबा रहा करते थे, पुराने मंदिर के गली में पीछे एक घर में, घर के पसेज में उनका एक क्लॉजेट था, हाँ देख सकते हैं, अभी तो वो किसी और का है, वो सब क्लॉजेट सब निकल गया है, पहले था, हाँ दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते। तो मदन टेर की सुंदर एक लीला है, उसका नाम मदन टेर कैसे पड़ा, क्योंकि मदन टेर जो है ना वो जमुना किनारे है, और जमुना किनारे का जितना हिस्सा है उत्तर दिशा में वो सब रास मंडल है, बंसीवट मेन वहाँ पर है, वहाँ पर बंसीवट में भगवान ने बंसी बजाई थी, गोपियों को बीच रात बुलाया था, लेकिन रास मंडल क्षेत्र बहुत बड़ा था, और जमुना किनारा बहुत सारा हिस्सा जो है वो रास मंडल है। तो एक दिन भगवान जब रास कर रहे थे तभी कामदेव वहाँ पर आए, कामदेव क्या करते हैं, हाँ कामदेव क्या करते हैं, कामदेव पुष्पबाण और पुष्प धनुष लेकर जाते हैं, और जहाँ जहाँ उनको लगता है कि स्त्री पुरुष का आकर्षण है, दुनियादारी का आकर्षण है, वहाँ बाण मार देते हैं, और बाण से हम विद्ध हो जाते हैं, फिर दुनिया में फंस जाते हैं। तो वो ढूंढते रहते हैं दुनिया में कौन कौन ऐसी स्थिति में है, तो यहाँ क्या देखते हैं, एक पुरुष और कई सुंदर कन्याएं खड़ी, तो अपना बाण उठाते हैं, धनुष पर लगाते हैं और भगवान पर निशाना बनाते हैं, लेकिन जब निशाना बनाते हैं तो उनके चेहरे को देखते हैं, वो जहाँ पर निशाना बनाना है, जब चेहरे को देखते हैं ना तो धनुष उनके हाथ से फिसल जाता है बाण के साथ, और खुद भी पिघल जाते हैं भाव विभोर होकर, कि ऐसा भी कोई सौंदर्य हो सकता है, क्योंकि कामदेव रति माता जी जो हैं वो सारे ब्रह्मांड में सर्वोच्च सौंदर्यमय व्यक्ति हैं, कामदेव पुरुष देवता सर्वोच्च सौंदर्य में है, और रति देवी डेमिगॉडेस देवी में सबसे सुंदर है। तो उनको ये कल्पना नहीं है कि हमारे आगे भी कोई सौंदर्य हो सकता है, और ये सौंदर्य कैसा है, कामदेव रति देवी के हजारों करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य है वो जो वो देख रहे हैं। तो इसलिए वो एकदम भाव विभोर होकर कहते हैं, न केवल धनुष से पिघल जाता है, गिर जाता है हाथ से फिसल के, लेकिन वो वहाँ पर पिघल जाता है दोनों, रति देवी और कामदेव। तो केवल अपने अस्तित्व से भगवान ने रति देवी और कामदेव को परास्त किया है, उसका नाम है मदन टेर। तो अगर हम सब लोग कामदेव के बाण से विद्ध हैं इसलिए यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर नहीं होते। तो अगर वो बाण निकालना है छाती से तो कृष्ण के शरण में जाना होगा, अपने बलबूते पर ये बाण को निकालने की शक्ति किसी में नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल शिवजी हैं बस, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि तो शिवजी के पास भी गए थे एक बार बाण मारने के लिए, तो शिवजी ने तीसरा डोला आँख खोल दिया और जलाकर भस्म करके राख कर दिया उसको, फिर उशाप देकर जिंदा कर दिया, लेकिन शिवजी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हाँ तो मैसेज यही है कि श्री कृष्ण भगवान की शरण जाने से हम इस बाण के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं, और उनके चरण के आश्रय से उनके निवास, उनका धाम आश्रय, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. अभी मुरलीधर प्रभु विनती कर रहे हैं कि घनश्याम बाबा की जगह दिखाएं, हाँ, लेकिन घनश्याम बाबा की जगह दिखाने के पहले उनके बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना, समझेगा नहीं कौन सी झोपड़ी दिखा रहे हैं उनको। तो जब हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज 19-20 साल की उम्र में जब आए वृंदावन में, तब केवल दो विदेशी यहाँ पर थे पूरे ब्रज में, केवल दो, एक असीम कृष्ण थे जिनको भी हम कई बार मिले हैं, और एक थे रिचर्ड स्लाविन। वो दोनों की शायद जटाएँ थी बड़ी बड़ी, हमारे महाराज के लंबी जटाएँ थी। असीम कृष्ण जो थे वो ना 6 महीने हम्पी में रहते थे, हनुमान जी के जन्म स्थान पर 6 महीने ब्रज में रहते थे, और दोनों जगह पर रिसर्च करने का उनका प्रोजेक्ट था, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पूरा फ्री में यहाँ पर रहते थे ब्रज में, 6 महीने वहाँ 6 महीने यहाँ। तो हमारी कई यात्राओं में वो आए हैं और उन्होंने कथा वथा किया है। तो ये घनश्याम बाबा यहाँ पर रहते थे, उनका इतिहास ऐसा है कि वो बहुत पहले की बात है, महाराज जी आने के बहुत पहले की बात है, जब वो जवान बालक थे, राजा के पुत्र थे, वो राजस्थान से आए थे अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन ब्रज में आने के बाद तुरंत उनके हृदय पर इतना परिवर्तन हुआ, इतनी विरक्ति आ गई कि वो माता पिता के साथ वापस गए नहीं। माता पिता ने बहुत प्रयास किया, कई बार लौट के आए, कई बार जिद किया थोड़ी देर रहो बाद में आ जाओ, लेकिन वो उनका हृदय इतना यहाँ पर एकनिष्ठ हो गया था कि वो यहाँ से निकले नहीं, और एकदम फकीर बाबा बने। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, कैसे थे, राजकुमार थे ना वो, लेकिन कैसे ऐसे बने विरक्त की आप विचार भी नहीं कर सकते हैं। 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे हाथ में, तो वैसे ही ये विरक्त बाबा बन गए और यमुना किनारे रहते थे। और यमुना किनारे में बैठकर ना रेती पर हमेशा राधे राधे लिखते थे रेती में, और राधे लिखते थे और अपने हाथ से मिटाते थे, फिर वापस लिखते थे, फिर मिटाते थे। तो एक बार जब लिख के मिटा रहे थे तो हाथ को कुछ लगा उनके, ऐसे किले की तरह ऐसा कुछ चुभा, तो उन्होंने जब खोदा तो कुछ मुकुट जैसा दिखाई पड़ा, मुकुट जैसा ऐसा ऐसा दिखाई पड़ा। अभी तो ऐसा बिंदु था ना, तो ऐसा प्रकट हो गया। और खोदा और खोदा और खोदा तो राधा और कृष्ण के सुंदर विग्रह प्रकट हो गए यमुना जी के किनारे से, और कृष्ण के मूर्ति के जो जहाँ पर खड़े हैं वो वेदी, उस पर लिखा है गोपी जन वल्लभ, आज भी लिखा हुआ है। तो विग्रह का नाम भी लिखा हुआ था गोपी जन वल्लभ। तो फिर उन्होंने दो विग्रहों को घर ले गए, अपने झोपड़ी में ले गए, वहाँ पर वो उनकी सेवा करने लगे, और ऐसी भावपूर्ण सेवा करते थे कि ऐसे थाली में भोग लगाते थे और दोनों को ऐसे हाथ से खिलाते थे, ऐसे ऐसे भाव से सेवा करते थे। फिर वो किसी गृहस्थ के घर में रहने लगे, उनके घर में पैसेज में एक कबर्ड था, क्लॉजेट, उसमें विग्रहों को रख के उसी के नीचे वो रहा करते थे, सोवा करते थे, और वहीं से जमुना जी में जल लाकर उनके लिए भोग बनाते थे, भिक्षा करते थे, ऐसे उनका विरक्त जीवन था। तो असीम कृष्ण प्रभु की कृपा से हमारे गुरुदेव को इनका परिचय हुआ, और उनकी बहुत सुंदर सुंदर कहानी है, कितने श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के। जवान उम्र में आए थे और बड़े बुजुर्ग बूढ़े हो गए वो, लेकिन रोज जमुना जी से जल लेके आते थे बकेट भर के, वो ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो हमारे गुरुदेव बहुत जवान थे 19-20 साल के, तो जब वो उनको मदद करने की कोशिश करते थे तो कहते थे नो नीड नो नीड नो नीड नो नीड, उनको इंग्लिश आती नहीं थी ज़्यादा, लेकिन वो इतनी बात जरूर उनको उन्होंने पहुँचाई अपने मन की बात कि आप गोपीजन वल्लभ के मित्र हो और मैं गोपीजन वल्लभ का सेवक हूँ, इस नाते आप गोपीजन वल्लभ की सेवा में नहीं आ सकते, आप केवल आनंद ले सकते हो, यू आर सपोज टू एन्जॉय लाइक गोपीजन वल्लभ, मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए जब बकेट उठाने के लिए हेल्प करने का प्रयास करते थे नो नीड नो नीड नो नीड करके खींचते थे उनके हाथ से। कुछ दिन उनके साथ में हमारे गुरुदेव रहे उनके झोपड़ी उनके इसमें, तो इनके पास एक ही कंबल था, तो पहले हमारे गुरुदेव को उन्होंने कंबल दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जवान हूँ आप तो बूढ़े हो, आपको कंबल की जरूरत है, आप कंबल लीजिए। तो बहुत सारा मुठभेड़ टाइप झटपट होने के बाद में घनश्याम बाबा ने वो बोला हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं उड़ता हूँ तुम सो जाओ। तो फिर उसके बाद में रात बढ़ी तो हमारे गुरु जी को ठंड लगने लगी, लेकिन कुछ देर बाद में उनको बहुत गर्मी का अनुभव हुआ, अच्छी तरह से वार्म फीलिंग हुआ, तो जग गए, देखा तो क्या वो कंबल उनके शरीर पे था। तो फिर रात को उठे उनके शरीर पे कंबल अर्पण किया। तो फिर नो नीड, यू आर गोपीजन वल्लभ फ्रेंड, आई एम गोपीजन वल्लभ सर्वेंट, ऐसे करके फिर भी महाराज ने उनको जबरदस्ती पहनाया। वो महाराज अलग सो गए और बाजू में सो गए। फिर कुछ देर बाद में जब जगे महाराज तो ब्लैंकेट उनके ऊपर था। ऐसे रात भर सिलसिला चलता रहा और गोपीचंद वल्लभ को जो भोग लगाते थे ना, वो केवल एक आदमी के लिए भी पर्याप्त तो भोजन नहीं हुआ करता था, और वो सारा भोजन वो हमारे गुरुदेव को खिलाया करते थे। बोले यू आर गोपीचंद वल्लभ फ्रेंड, तो यू शुड एंजॉय, और खुद भूखा रह के उनको खिलाते थे। तो ऐसे बहुत अद्भुत भक्त थे, बहुत ही अद्भुत भक्त थे, बड़े भाव के भक्त थे। तो दरवाजा बंद करना। तो फिर उन्होंने और एक यहाँ पर श्रीपाद बाबा थे उस समय, श्रीपाद बाबा जिन्होंने वहाँ पर वो ब्रज इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का उधर है बड़ा, उन्होंने खोला था। और ये बाबा थे ना श्रीपाद बाबा, वो ऐसे थे कि अभी आपके बीच में हैं, अभी गायब हो जाते थे और किसी और असेंबली में मिलते थे, फिर वहाँ से गायब होकर फिर वापस यहाँ दिखते थे, तुरंत बरसाने में दिखते थे, कभी बरसाने में कभी गोवर्धन में, ऐसे दिखते थे वो, अदृश्य होते थे वो हमेशा। सब जानते थे उनको, उनका ये चमत्कार, लेकिन सबके मित्र भी थे वो। तो वो श्रीपाद बाबा ने और घनश्याम बाबा ने उनको बताया फिर कि आप बरसाने चले जाओ, वहाँ पर एक रमेश बाबा जी महाराज हैं, उनके संग में आपको भगवान के विषय में बहुत साक्षात्कार प्राप्त होगा। फिर इनका आशीर्वाद लेकर फिर महाराज जी चलकर बरसाने गए और पहाड़ चढ़ के फिर मान मंदिर गए, फिर रमेश बाबा जी से उनका मुलाकात हुआ। इसी दौरान जब वो घनश्याम बाबा को मिल रहे थे, तो घनश्याम बाबा का जो घर था वो पुराने राधा वल्लभ जी के मंदिर के बगल में था, इन शॉर्ट राधा वल्लभ जी के घेरे में था। तो घनश्याम बाबा जी इनके पूरे परिवार से बहुत अच्छे परिचित थे। राधेश लाल जी महाराज जो यहाँ बैठे थे ना, सत्यनारायण प्रभु, राधेश लाल जी महाराज जहाँ बैठे थे ना, उनके परिवार के बहुत परिचित थे वो। तो उनके वजह से इनकी भी उनकी मित्रता हुई। और तभी ये भी कुछ 21 साल के थे और हमारे महाराज कुछ 19 साल के थे। उनकी दोनों की इतनी मित्रता थी, हमारे गुरुदेव और इनकी, कि आज तक इनको इंग्लिश नहीं आता है और हमारे गुरुजी को हिंदी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो रात रात भर बातें किया करते थे। कभी कभी मान सरोवर जाकर वहाँ पर ओवरनाइट बातें करते थे। और इनका जो संप्रदाय है ना, वो गृहस्थों का संप्रदाय है। जैसे आप शादी करेंगे, फिर आपको पहला पुत्र होगा, फिर वो आगे का अधिकारी बनेगा, फिर वो विवाह करेगा, फिर उसको पहला पुत्र आगे का अधिकारी बनेगा, युवराज बनेगा। तो इनकी माता जो है ना, हाँ, ये इनका जो पूरा वंश जो सेवा है राधा वल्लभ जी की, वो गृहस्थ परिवार की सेवा है। तो इनकी माता जो थी ना, वो देखती थी कि ये तो बाबा है राधानाथ महाराज और हमारे पुत्र तो गृहस्थ हैं, होने वाले हैं गृहस्थ, तो इनके संग में रात रात बातें करेंगे। तो प्रेम से डांटते थे, अरे तुम मेरे बेटे को बाबा तो नहीं बना दोगे, तो आगे की सेवा कौन करेगा राधा वल्लभ जी की, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, टिकेत अधिकारी है, इनके शिष्य हैं, उनकी बहुत बड़ी सेवा है उनकी। ऐसे प्रेम से डांटते थे हमारे गुरुदेव को, लेकिन उतने ही प्रेम से भोजन कराते थे। और अभी फिर बीच में जब हम आए तो 30 साल पहले तो हम उनका अनुवाद करने लगे उनके संभाषण का, लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि जब से तुम अनुवाद कर रहे हो अच्छा है, लेकिन वो आनंद नहीं है जो संभाषण के बिना हुआ करता था। वो जो हृदय से हृदय की बातें होती थी ना, वो अनुवाद से नहीं हो सकती है, अनुवाद से भी दिमाग में घुसती है, लेकिन पहले हृदय से निकलती थी और हृदय में छूती थी। भक्ति का संबंध हृदय से होता है, हाँ, मन से, बुद्धि से और ज्ञान से नहीं होता है। तो इनकी कई जगहें हैं यहाँ पर मंदिर में भी, एक नल है, नल वहाँ पर सब कपड़े धोते हैं, वहाँ पर बर्तन धोते हैं, वहाँ बैठ कर ये बातें करते थे। तो मुझे आकर हाथ पकड़ के दिखाया कि यहाँ पर हम बैठते थे, यहाँ पर बैठते थे, यहाँ बातें करते थे। इसलिए इनके और हमारे गुरु जी का बड़ा प्रेम संबंध है। उसी के कारण 1992 में जब मैं यहाँ पर आया था और मेरी प्रैक्टिस भी कहाँ करता था इसके पास में ही, तो इनके चाचा जी को अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया। तो फिर हम लोग उनकी सेवा में रहे तो 36 घंटे 40 घंटे लगातार आगरा गए और सब उसका आईवी फ्लूइड्स मेडिसिन सब चालू रहा और कैसे भी। फिर एक समय ऐसा आया कि अभी इतना समय प्रयास करने के बाद, उस समय सिटी स्कैन नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग वॉज देयर, तो ऐसा स्थिति आ गया कि हम समझ गए कि अभी वो शरीर छोड़ने वाले हैं। तो फिर प्रयत्न पूर्वक हम उनको ब्रज में ले आए, कोमा में थे लेकिन जिंदा थे। और फिर जब यहाँ पर आके छोड़े घर पे, सब लोग ने हरिवंश की वाणी का पाठ किया रात भर, और फिर अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन उनका शरीर छूट गया। तो भगवान की दया है एक्चुअली। तो उसके वजह से राधा वल्लभ जी, राधेश लाल जी महाराज, उनका परिवार और हमारा बड़ा प्रेम का संबंध है। और वो ब्रजवासियों का एक विशिष्ट गुण है, बहुत ही विशिष्ट गुण है, जिसका हम कहते हैं अति तीव्रता से हम उसका अनुभव करते हैं कि 92 साल में जो सेवा छोटी सी की थी उसके वजह से आज भी वो इतना ऋण रखते हैं मन में, कृतज्ञता रखते हैं कि आज भी हम किसी को मिलते हैं आकर उनके साथ में तो बताते हैं कि हमारे चाचा जी का इन्होंने सेवा किया था। कितने साल हो गए? 26 साल हो गए। हम तो कभी 15 दिन के अंदर भूल जाते उसको, है ना, थोड़ा दिन रखते कृतज्ञता। इतनी कृतज्ञता है, इतना प्रेम है कि इसके वजह से हमारा पूरा परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे भाइयों का परिवार, वो सब लोग यहाँ आए, सब लोगों ने प्रसादी लिया, सब लोगों को हम इन्होंने ठाकुर जी का महावस्त्र दिया। हाँ, ये हमारे भाई है, ये हमारी भाभी है, ये हमारी बहन है, ये हमारे ये है, ऐसे सब लोगों को उन्होंने कृपा किया है, इतना प्रेम दिया है। हाँ, तो कृतज्ञता जो है ना, ग्रैटिट्यूड, वो इनसे सीखनी चाहिए। एक बार किसी ने उपकार किया तो जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। वैष्णव का गुण कैसे होता है? वो हमारे जो अरविंद भाई मुफतलाल है ना, जो हमारे कृष्ण प्रभु के पिताजी हैं, वो कहा करते थे कि हमको किसी ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया ये हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, दो चीज भूलना चाहिए, दो चीज याद करना, ऐसा बोलते थे वो। तो जो हम पर उपकार किसी ने किया वो जिंदगी भर याद रखना है, और जो उपकार हमने किस पर किया है वो हमको तुरंत भूल जाना है। मराठी में क्या बोलते हैं, यह हाथ ने दिला तो यह हाथाला कर लेना पाहिजे, इस हाथ से दिया तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और किसी ने हमको दुख दिया तो उसको तुरंत भूल जाना चाहिए, और किसी ने हमको सुख दिया तो हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा उनका एक फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला जो है ना, उसके मूर्तिमान उदाहरण है ये लोग। जरा सा कुछ हो गया सेवा, जिंदगी भर याद रखते हैं। सेवा तो हुई, खत्म भी हो गई वो। तो इस तरह से ये हमारे गुरुदेव मुझे बताते हैं कि इनका संबंध प्राप्त होना ये भगवान की बड़ी हमारे पर कृपा है, कि इनका परिचय और इनका संबंध प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान पर इतना प्रेम करते हैं कि दिन रात भगवान के बारे में बोलते हैं वहाँ बैठकर। दिन रात जब भी जाओगे तो राधा वल्लभ जी का गुणगान करते रहते हैं, और जब उनकी सेवा नहीं होती तो उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़े अस्वस्थ भाव को अनुभव करते हैं वो। दे फील वेरी अनइजी व्हेन द सेवा इज नॉट देयर। तो वो टू दो परिवार है, दो एक परिवार को बांट बांट के सेवा आती है। तो आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी से इनका जो आसक्ति है वो कितनी गहरी है। जैसे हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है जो विदेश वाला पढ़ने को चला गया, तो हम लोग कैसे याद करते हैं उनको। इस प्रकार का बहुत गहरा प्रेम संबंध ठाकुर जी का है। और अपनी सेवा नहीं भी होती है फिर भी 1 घंटा गर्भगृह में जाते हैं और वहाँ पर ठाकुर जी के सामने 1 घंटा बिताते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं उनका। तो ब्रजवासियों के से हम ठाकुर जी का प्रेम जो है ना वो सीख सकते हैं, कैसा प्रेम करते ठाकुर जी, कैसे करना चाहिए, कैसे दिल मन बुद्धि आत्मा अस्तित्व शरीर सब में भगवान को बसाना है। हाँ, क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, तुझे दिल में बंद कर दूं, दरिया में फेंक दूं चावी। ऐसे हम गाना सुनते थे बचपन में, ये भगवान के लिए फिट गाना एकदम। भगवान को खाली दिल में रख के गाना गाएंगे ना तो परफेक्ट है ये। गर्लफ्रेंड को भी दिल में रख के गाएंगे तो फिर मुंह पे गिरेंगे एक दिन निश्चित रूप से, विल फॉल ऑन द फेस। लेकिन यही गाना भगवान को दिल में रख के करेंगे तो परफेक्ट गाना है ये। उनको ही बसाना है दिल में, वो सब कुछ भूल जाना है, और उनके साथ में जो हमारे संबंधी है वही हमारे रियल संबंधी हैं। बाकी सब आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप सब लोग बड़े अनुभवी लोग हो, दुनिया में कई साल बिता चुके हो, तो जानते हो कि रिश्तेदारी में क्या क्या होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, मरो जिंदा रहो हु केयर्स। लेकिन भक्त लोगों को ही आपकी परवाह होती है और वो आपकी देखभाल करते हैं। और जब संकट आता है ना तो भक्त लोग ही आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। बाकी सब नाम वाले लोग हैं ना जो आपका सरनेम शेयर करते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, और जो आपका दीक्षा परिवार शेयर करते हैं वही आ जाते हैं भाग भाग के सेवा करने के लिए। एनीवे श्री श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।